ओम शांति। मैं श्रोणा बहन हूँ इसराइल से। 30 मई की मुरली की दोहराई के लिए इस मुरली में कुछ पॉइंट्स हैं जिन्होंने शुरुआत से ही मेरा ध्यान खींचा। पहला है, अभी तुम बच्चे कहाँ भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। लेकिन इसी मुरली का सबसे पहला पॉइंट है, बाबा कह रहे हैं तुम बच्चों को बहुत सहज रास्ता समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकर खाते रहते हैं। और फिर इन दो पॉइंट्स के बीच में बाबा माया के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे माया हमें नाक से पकड़ती है और हमसे गलतियां करवाती है। तो मैं इस माया के बारे में हाल ही में सोच रही थी और एक तरह से मेरी ब्राह्मण यात्रा को और माया के साथ मेरे संबंध को प्रत्यक्ष कर रही थी, देख रही थी। और मैंने देखा कि जब शुरुआत में माया के बारे में मुझे बताया गया था तो मैं असहमत हुई थी, मुझे उससे कोई संबंध महसूस नहीं हुआ था। मुझे लगा मुझे तो ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, मुझे तो कोई माया नहीं है, ऐसा मुझे लगा। मुझ में इतना अधिक आत्मविश्वास था, इतना अधिक उमंग उत्साह था और इतना अधिक निश्चय था। लेकिन निस्संदेह जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वह सब घटता गया, वह आत्मविश्वास, वह उत्साह घटता गया। और मैंने देखा कि मैं उसका सामना करने के लिए दो चरणों से गुजरी। पहला चरण था दूसरों को दोषी ठहराना। यह एहसास था कि जो अनुभव मुझे बाहर दुनिया में हुआ वही इस संगठन में भी होगा। मैं बिल्कुल अलग हूँ, यहाँ भी अलग हूँ, इस संगठन में भी मैं फिट नहीं हो सकूंगी, मैं उपयुक्त नहीं रहूंगी। तो अकेलेपन की भावनाएं और दूसरों को इसके लिए दोषी ठहराना, यह पहला चरण था। और जैसे जैसे समय बीतता गया दूसरा चरण आरंभ हुआ जिसमें यह एहसास हुआ कि यह थ्योरी नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है, यह वास्तविकता है। यह समझ कि जो भी चुनौतियां हैं, मुश्किलें हैं, संबंधों में, अलग अलग परिस्थितियों में, मेरी स्व उन्नति में, ये मेरे कारण ही हैं, ये मेरी ही समस्याएं हैं, ये मेरे खुद के ही कर्मों के हिसाब किताब हैं, ये मेरे ही संस्कारों के कारण हैं। और मैंने उस एलोए या खाद को या प्रदूषण को देखना आरंभ किया, यह दूसरा चरण घटा। और इसका अर्थ है कि आत्मविश्वास और उमंग उत्साह और भी कम हो गया, नीचे चला गया। और मैं जानती हूं कि पहले कुछ सालों में उससे निपटने के लिए कैसे कार्य किया। जो रूपरेखा संरचना बाबा हमें देते हैं कि वह एलॉय और प्रदूषण, ये मेरी गलती नहीं है और किसी और की भी गलती नहीं है, ड्रामा ही इस प्रकार बना हुआ है। दूसरे शब्दों में हम एक बैटरी की बात कर रहे हैं जिसकी शक्ति कम होती जाती है, जो कुछ भी अच्छाई है, सच्चाई है, वह खाली होता ही है। लेकिन मेरी किसी गलती से नहीं, किसी और की भी गलती से नहीं, लेकिन यह ड्रामा है। और इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लेकर बहुत लंबे समय तक पुरुषार्थ किया। लेकिन फिर से जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी अवस्था को बनाए रखना बड़ा, बहुत बहुत बड़ा संघर्ष लगता था। मुझे उस खाली कर देने वाली भावना के खिलाफ बहुत काम करना पड़ता था। और भी कम कम उमंग उत्साह, और भी कम आत्मविश्वास, और भी कम निश्चय। मैं जितना चार्ज कर रही थी उससे अधिक तो खाली हो रही थी। और मैंने एक अगले चरण में प्रवेश किया, वह सृष्टि चक्र या ड्रामा का उपयोग करने का तरीका मेरे लिए काम नहीं कर रहा था। और मैंने उन कमियों के प्रति बेपरवाही सी अपना ली थी, जैसे बाबा कहते हैं ना, अलबेलापन। तो आप इधर उधर देखते हैं कि लोग कैसे अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, अपने लिए कोई खास तनाव का निर्माण नहीं करना, बस रिलैक्स करना, अधिक परिश्रम ना करना, लेकिन सब गलत तरीके से। लेकिन वह भी एक तरह का चरण बन गया, समय बन गया जिससे मैं गुजरी। लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपनी बहुत स्थिति गंवा रही हूं, इस प्रकार के अलबेलेपन से और जो आरामदायक क्षेत्र कंफर्ट जोन मैंने बना लिया था उसमें रहकर, मुझे इस बात का आभास हुआ कि जिस पर मैं वर्तमान समय भी कार्य कर रही हूं, एक रियलाइजेशन हुई। आज की मुरली भी उस पॉइंट को अंडरलाइन कर रही है और वह पॉइंट है कि इन तमो प्रधान संस्कार जो मुझ में है उनके लिए एक है जो दोषी है। हाँ, अपराधी एक दोषी दल भी है इन सभी कमियों के लिए, जिनसे मुझे डील करना है, फिर औरों के साथ भी डील करना है, लेकिन दोषी मैं नहीं हूं और दोषी ये परिवार भी नहीं है, दूसरे भी नहीं, लेकिन वह माया है। माया के बारे में बाबा समय प्रति समय बात करते हैं कि माया भी बाबा के जैसे सर्वशक्तिवान है। और यह एहसास दूसरे चरण में कि मेरा अकेले का पुरुषार्थ नहीं, जो भी संसार में अभी चल रहा है, जैसे कोरोना का संकट और सचेतक, जो सचेत करने वाले लोग हैं या सच बताने वाले हैं, ग्रह के सभी चार कोनों से उभर उभर कर आ रहे हैं, अपनी अपनी कहानियां बता रहे हैं, अपना अपना दृष्टिकोण बता रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं। और सच में इतने बड़े स्तर के खराब माहौल में जो संसार में अभी चल रहा है, और हम स्वयं को डालना और यह पहचान कि सच में खराब शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं जो चालाकी से काम कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, और सभी कोशिशों को, जो कोशिशें किसी के द्वारा भी हो रही हैं, जो कि विभाजन को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, एकता को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्व के प्रगति कर रहे हैं, दूसरों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, दो लोगों के बीच के अंतर को स्वीकार कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सच में एक शक्ति है जो बहुत दृढ़ है और इन सभी कोशिशों को नाकाम कर रही है और इनको आगे न बढ़ने के लिए उसमें बहुत दृढ़ संकल्प है। तो मैंने यही पाया कि इसे पहचानना मेरे लिए लाभदायक रहा। यह वही युद्ध क्षेत्र है जहां मैं पहले अलबेली थी, क्योंकि यह अतुलनीय आसुरी शक्ति माया मेरे अंदर कोई भी प्रदूषित संस्कार, मेरे और किसी के बीच के प्रदूषित संस्कार, संगठन में कोई ऐसा संस्कार या कोई भी परिस्थिति, उन सबसे ये बड़ी है, ये आसुरी शक्तियां। ये आसुरी शक्ति सच में बहुत बड़ी है। हम सच में नरक में हैं, जो कि माया की संपूर्ण मानवता पर और संपूर्ण ग्रह पर विजय है, और हम सच में एक लड़ाई से गुजर रहे हैं अच्छाई और बुराई के बीच, क्योंकि स्वयं भगवान एक तरफ के गुट का नायक है। यह बहुत अलग चित्र है जो मेरे लिए फिर से वास्तविक हो गया है, और मैंने देखा कि इस युद्ध भूमि में लड़ने के लिए मेरी सारी दृढ़ता, सारा आत्मविश्वास वापस आ रहा है, और इस जीत के लिए जो निश्चय है वह भी वापस आ रहा है, क्योंकि जीत के लिए वह भी शक्तिशाली औजार है, हथियार है। और मैंने यह अनुभव किया कि यही सच्चा स्वमान है, और जैसा कि बाबा आज की मुरली में कह रहे थे, यह हमारी महानता है और हमारी महानता और महिमा का आधार है कि मैं स्वयं को इस युद्ध भूमि में ले जाऊं और वहां सतत रहूं। मेरे लिए नहीं, एक दूसरे के लिए भी नहीं, या फिर किसी विशेष स्थानीय समस्या के लिए भी नहीं, लेकिन एक बड़ी जीत के लिए, परमात्म विजय के लिए। और मैंने यह भी पाया कि इस नए हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में रहने से न केवल मेरा स्वमान बढ़ता है, बल्कि स्व के प्रति प्रेम, या फिर आप कह सकते हैं स्व के ज्ञान के लिए, स्व को ऐसे ही जानना जैसे भगवान मुझे जानता है, जो कि उसका प्रेम प्राप्त करने का आधार भी है। मैंने उसके लिए प्रेम, मेरा उनके लिए प्रेम, और दूसरों के लिए मेरा प्रेम, और दूसरों का मेरे लिए प्रेम। तो प्रेम के साथ इस प्रकार का संबंध रखना, मेरे ख्याल से बाबा यही कह रहे हैं जब बाबा कहते हैं ना कि मुझ एक को याद करो। तो जिस प्रकार की मुरली आज है, तो मेरे लिए तो ये वास्तव में चेक करना है कि मैं कहाँ बैठी हूँ। सच्चे स्वमान की सीट पर बैठने का अर्थ है हाथी पर बैठना। मैं वह महारथी हूँ, लेकिन अब नए औजारों के साथ, जो नए संस्कार है, चौड़े एंगल वाला लेंस, क्योंकि महारथी इतनी ऊंची सीट पर स्थित है ताकि वह सब कुछ आसानी से देख सके, सारी पिक्चर देख सके, और यह स्मृति रहे, यह जागृति कि कोई जीत महत्वपूर्ण नहीं है और कोई छोटा मोटा मैं मेरे के स्तर का नहीं, लेकिन भगवान की सेना के लिए विजय। और यह भी चेक करना कि मेरा शुद्ध घमंड यही ना हो कि मैं आत्मा हूँ, ब्राह्मण हूँ, भगवान का डायरेक्ट बच्चा हूँ, लेकिन मैं एक शिव शक्ति हूँ, भगवान की सेवा में संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण रूप से समर्पित उस जीत के लिए जो भगवान की जीत है। ओम शांति।